नमस्कार, CSIR CFTRI की अपनी पाक्षिक ऑडियो डाइजेस्ट थाली टेल्स में आपका स्वागत है। थाली टेल्स आपको पोषण, खाद्य अनुसंधान, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है भाग एक, अंक 9, 28 जून 2019। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोटीन, जीवन नामक इंजन के ईंधन, पाक कला की खोज तथा CSIR CFTRI की वरिष्ठ मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह के साथ पोषण विषय पर साक्षात्कार। प्रोटीन, जीवन नामक इंजन के ईंधन। कितना विचित्र है ना, जब भी कहीं पोषण विषय पर चर्चा चलती है, लोग सबसे पहले प्रोटीन की ही बात करते हैं। प्रोटीन मानो पोषण का पर्याय ही बन गया हो। तो ये प्रोटीन क्या है, वे कहाँ से आते हैं और वे हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं? जवाब है सर्वव्यापी। जी हाँ, प्रोटीन हर जगह है। सभी खाद्य पदार्थों से हमें मिलते हैं और हमारे शरीर में होने वाली हर एक महत्वपूर्ण गतिविधि में शामिल होते हैं। तो हुए ना प्रोटीन सर्वव्यापी। स्वीडिश भाषा में प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ है जो पहले स्थान पर है। सन 1838 में प्रसिद्ध स्वीडिश रसायन शास्त्री जॉन जेकॉब बर्जीलियस ने सर्वप्रथम इस नाम का प्रयोग किया था। उनके अनुसार प्रोटीन प्राणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रसायन है, इसलिए इन्हें यह नाम देना सर्वोत्तम है। प्रोटीन अनगिनत है, फिर भी यह अनुमान लगाया जाता है कि हमारे शरीर में उनकी संख्या लगभग 20,000 है। अरे, हमारे शरीर में प्रोटीन की संख्या को तो छोड़ ही दीजिए, छोटे जीवाणुओं में भी उनकी संख्या बहुत अधिक हो सकती है। आप इनकी संख्या से ही इनकी विविधता का अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में हमारे शरीर का आधा हिस्सा बगैर पानी के और कुछ नहीं बल्कि मांसपेशी यानी मसल प्रोटीन ही है। इसके अलावा रक्त में, रक्त के लाल वर्णक में और तंत्रिका कोशिकाओं में भी प्रोटीन अपनी हाजिरी देता है। प्रोटीन लंबी श्रृंखला वाले अणु है। जरा कल्पना कीजिए 20 अलग अलग रंगों के मोतियों से बनी एक माला की। ये माला है प्रोटीन और इन मोतियों को कहा जाता है अमीनो एसिड। हम प्राणियों का शरीर एक प्रतिक्रिया वाहिका की तरह काम करता है, जहां ये अमीनो एसिड पहले एक प्रोटीन से अलग होते हैं और फिर अन्य प्रोटीन में फिर से आकर जुड़ जाते हैं। प्रोटीन को तोड़ने और बनाने की यह प्रक्रिया सभी प्राणियों में एक समान रूप से चलती है, न सिर्फ जीते जी बल्कि मृत्यु के बाद भी। दूसरे शब्दों में हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है वह प्रोटीन में बदलाव का परिणाम है। आंख का फड़कना, मांसपेशियों का हिलना, खिलाड़ियों की मांसपेशी का फड़कना या जल्दी जल्दी सांस लेना सभी किसी न किसी प्रोटीन की क्रिया और अंतःक्रिया के कारण होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि प्रोटीन भोजन का ही एक हिस्सा है जो हमें मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है, तो आप बिल्कुल सही हैं। पर साथ ही यह शरीर में प्रोटीन का एकमात्र कार्य नहीं है। जीव विज्ञानी प्रोटीन को जीवित रूप में होने वाली सभी चीजों के महत्वपूर्ण चालक के रूप में देखते हैं। लेकिन भला पोषण विशेषज्ञ पर्याप्त प्रोटीन खाने पर जोर क्यों देते हैं? कारण है हमारा शरीर। हमारा शरीर 20 अमीनो एसिड में से केवल कुछ 10 ही संश्लेषित कर सकता है। बाकी 10 की भोजन के माध्यम से आपूर्ति की जाना जरूरी है। इन्हें आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। सही बात तो यह है कि इस अधूरी दुनिया में कोई आदर्श या परिपूर्ण भोजन है ही नहीं जो सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान कर सके। कुछ हद तक दूध और अंडे से सभी प्रकार के अमीनो एसिड हमें मिल ही जाते हैं। मांस और मछली भी सभी आवश्यक अमीनो एसिड की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं जितने की हमारे शरीर को चाहिए। दूसरी ओर वनस्पति प्रोटीन केवल कुछ ही अमीनो एसिड की आपूर्ति कर पाते हैं। लेकिन फिर हमारे शरीर में प्रोटीन करते क्या हैं? वैसे कुछ प्रोटीन एंजाइम भी होते हैं। यही कारण है कि वे हमारे शरीर में होने वाली कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए पेप्सिन एक प्रोटीन है और इसका कार्य पाचन तंत्र में अन्य प्रोटीनों को पचाना है। ऐसे ही ट्रिप्सिन भी है, या हीमोग्लोबिन को ही ले लीजिए। पर हीमोग्लोबिन एंजाइम नहीं है, यह सिर्फ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का कार्य करता है। यह क्या करता है और कैसे, आसपास के रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। लेकिन ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने की यह क्षमता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम सांस लेते हैं यानी कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान, यह हमें हवा से ऑक्सीजन लेने और विभिन्न अंगों को आपूर्ति करने में मदद करता है। एक अन्य प्रोटीन जिसकी काफी चर्चा की जाती है वह है मसल प्रोटीन यानी मांसपेशी प्रोटीन, जो आकार में हीमोग्लोबिन के विपरीत बहुत लंबे होते हैं। वे लचीले होने के साथ साथ सिकुड़ भी सकते हैं और विस्तारित भी हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन की इसी क्षमता के कारण हमारे हृदय को सभी अंगों तक रक्त पहुंचाने में मदद मिलती है। राज की बात यह है कि प्रोटीन हमारे मूड को भी बनाए रख सकते हैं। छोटे प्रोटीन यानी कुछ अमीनो एसिड की छोटी छोटी श्रृंखलाओं को पेप्टाइड्स कहा जाता है। इनमें से कई हार्मोन्स भी हैं। कुछ इतने प्रभावी हैं कि उनका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। कुछ पेप्टाइड्स हमारे आसपास की घटनाओं के बारे में संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। एंडोर्फिन मस्तिष्क द्वारा उत्पादित ऐसे ही पेप्टाइड है। वे हमारे मूड को अच्छा भी करते हैं और दर्द को भी कम करते हैं। इंसुलिन तो जानते हैं ना, मधुमेह रोगियों का भरोसेमंद साथी। यह एक हार्मोन है जो कि पेप्टाइड भी है। और एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोटीन कोलिन एस्टरेज एक एंजाइम है। इसके बिना हमारा तंत्रिका तंत्र मानो मृत ही है, क्योंकि यह प्रोटीन तंत्रिका आवेगों मस्तिष्क से संदेश तंत्रिका कोशिकाओं के अंतराल को पार करने में मदद करता है। संक्षेप में कहें तो प्रतिक्रिया और संतुलन में यह मदद करता है। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ प्रोटीन अत्यंत हानिकारक भी होते हैं। कई पशुओं द्वारा छोड़ा जाने वाला जहर प्रोटीन या पेप्टाइड ही है। एक कोबरा के डंक में घातक पेप्टाइड्स होते हैं जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे लकवा तक मार सकता है। प्रोटीन खाद्य पदार्थ है और पेप्टाइड पचे हुए प्रोटीन है, लेकिन शायद दोनों के बिना मानव शरीर जैसा इंजन काम नहीं कर सकता था। तो बर्केलियस ने जो प्रोटीन को सूची में प्रथम नाम दिया वह वाकई गलत नहीं था। कुकिंग यानी कि पाक कला की खोज। श्रोताओं, आज हम पाक कला के विषय में बात करने जा रहे हैं। अरे नहीं, हम यहाँ किसी कुक बुक या रेसिपी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उस समय की बात करेंगे जब इंसानों ने खाना बनाने की कला यानी कि पाक कला की खोज की थी। यह माना जाता है कि पाक कला के बिना मानव सभ्यता उस हद तक विकसित नहीं हो सकती थी जितनी आज हम देखते हैं। आपको साक्ष्य के लिए बहुत दूर नहीं देखना होगा। उदाहरण के लिए पशु जगत में हमारे सबसे करीबी चचेरे भाई चिंपैंजी को ही देख लें। चिंपैंजी फलों को तोड़ने के लिए या जमीन में छेद से दीमक उठाने के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करते हैं, लेकिन वे आग से बहुत डरते हैं। और किसी ने एक चिंपैंजी को कंद खाने के लिए अंगारे जलाते शायद ही कभी देखा हो। आग तथा पाक कला की खोज ने ही वास्तव में मानव जीवन के विकास में सहायता की है और उसे वह बनाया जो वो आज है। पाक कला की खोज से हमें कई तरह से मदद मिली है। इसने हमें कुछ खाली समय दिया है और हमें उन पौधों की खेती और उपयोग करने में मदद की है जिनसे कोई खाद्य पदार्थ नहीं मिलते। उपकरण बनाने को प्रोत्साहित किया और इस तरह मानव बुद्धि के विकास को भी उत्साहित किया। लेकिन हमने खाना पकाने की कला कब सीखी? जाहिर है, खाना पकाने की शुरुआत हमने आग और उसके उपयोग की खोज के बाद ही की होगी। पुराने दिनों में खाना पकाने की क्रिया पूर्ण रूप से आग पर निर्भर थी। उस समय नई नई रेसिपी बनाने के लिए बिजली या माइक्रोवेव नहीं थे। बस आग में उबालना, भूनना, तलना इत्यादि माध्यम कुकिंग के लिए प्रचलित थे। दूसरे, खाना बनाना तब शुरू हुआ जब इंसानों ने आग पर काबू पाना सीख लिया। दूसरे शब्दों में, रसोई केवल तब शुरू हुई होगी जब मनुष्य ने आग जलाना तथा अपने आप से उसको नियंत्रित करना सीख लिया था। हमने ये कब सीखा? इसका जवाब देना कुछ आसान नहीं है, क्योंकि अग्नि कोई प्रमाण नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि आग जलने के बाद बची राख और लकड़ी का कोयला भी लंबे समय तक नहीं टिकता। इसलिए खाना पकाने की शुरुआत कब हुई यह पता लगाने के लिए कोई जीवाश्म नहीं है, लेकिन चतुर वैज्ञानिकों ने अप्रत्यक्ष सबूतों से निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है। जली हुई हड्डियाँ, भट्टी में हीमोग्लोबिन के अवशेष, दांत से चिपका हुआ एक स्टार्च का दाना, जमीन में खोदा गया एक खड्डा, ये सभी यह संकेत देते हैं कि हमारे पूर्वज क्या खाते होंगे और उन्होंने यह कैसे बनाया। आमतौर पर यह माना जाता है कि पाक कला की शुरुआत
30,000 साल से लेकर 2,50,000 साल पहले के बीच कहीं न कहीं मानव इतिहास के उस दौर में हुई होगी जिसे वैज्ञानिक पैलियोलिथिक या पाषाण युग कहते हैं। यह वह समय था जब मानव ने पत्थर के औजारों को बनाना और शिकार करने के लिए उनका इस्तेमाल करना सीखा। जाहिर है इसने उन्हें शाकाहारी खाने के साथ साथ मांस खाने में भी मदद की, लेकिन अच्छी तरह से खाना पकाने के सबूत केवल उत्तर पाषाण काल में मिले हैं, कुछ 10,000 से 30,000 साल पहले। आग का आविष्कार नहीं हुआ था, यह जंगली आग या बिजली के रूप में पहले से थी, लेकिन खाना पकाने के लिए इसके उपयोग का आविष्कार किया गया था। आग के उपयोग के सबसे पहले सबूत इसराइल में क्वेसेम और हायोनिम की गहरी गुफाओं में मिले हैं। गुफाओं में भट्ठी पाई गई है जहां आमतौर पर आग रखी जाती थी, पर उस आग का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया गया था या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। कुछ जली हुई हड्डियां भी पास में पाई गई हैं, जो या तो पकाए गए खाने के अवशेष हैं या आग जलाने के लिए ईंधन की तरह उनका उपयोग किया गया था। कुछ भी हो, इस सबूत से यह तो पता चलता है कि इंसानों ने आग पर काबू पाना सीख लिया था। ये गुफा लगभग 1.5 से 2.5 लाख साल पुरानी है। क्या इससे पहले खाने को पकाया नहीं जाता था? इस काल से पहले खाना पकाने या आग का उपयोग किए जाने के कोई सबूत नहीं है। हालांकि हमारे पूर्वजों जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और नियंड्रथल ने शायद आग का इस्तेमाल किया हो। दक्षिण अफ्रीका में वंडरवर्क गुफा में आग लगने के सबूत हैं, जो केवल कृत्रिम हो सकते हैं। उस गुफा की स्थिति बताती है कि वहाँ प्राकृतिक रूप से आग नहीं लग सकती। कुछ जली हुई हड्डियां भी मिली हैं, लेकिन वे ईंधन थे या भोजन एक बड़ा सवाल है। असल में खाना पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होती है, और जाहिर है कि मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने के बाद ही भोजन पकाना संभव हुआ होगा। सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों को लगभग 20,000 साल पहले दिनांकित किया गया है, और इसलिए हम यह मान सकते हैं कि अच्छी तरह से खाना पकाने की शुरुआत तब से हुई होगी। इससे पहले तो खुली आग ही दिखाई पड़ती थी जो कि प्राकृतिक थी। अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में जहां मनुष्य रहते थे, उन जगहों पर ऐसे पत्थर पाए गए हैं जिनको उच्च तापमान तक गर्म किया जा सकता है। क्या उन्हें मांस या अंडे को गर्म करने के लिए तवे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? वैज्ञानिकों का मानना है कि स्मोकिंग प्रक्रिया और गर्म करना खाना पकाने के सबसे पहले तरीके थे। खुली आग ऐसा करने के लिए पर्याप्त थी। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली आग का उपयोग करके शुरू की गई नई आग से भी यह संभव हो सकता था, लेकिन 40,000 साल पहले ऐसा होने के कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। यद्यपि कई स्थानों पर आग के प्रमाण मिलते हैं, पर वो खाना पकाने के लिए उपयोग की गई है या केवल गर्मी उत्पन्न करने के लिए, यह स्पष्ट नहीं है। कुछ पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी स्थलों में पत्थर से बनी भट्टियां देखी गई हैं, और ये भी खाना पकाए जाने के सबूत हैं। उत्तरी अमेरिका के मैदानों में कुछ बहुत पुराने, करीबन 20,000 वर्ष पुराने गड्ढे पाए गए हैं, जिनका उपयोग भोजन को उबालने के लिए किया जाता था। गड्ढे आग के अवशेषों से अटे पड़े हैं और उनके ऊपर पशु की खाल की परत पाई गई है। यह माना जाता है कि खाल को पानी से भर दिया जाता था और फिर भोजन को उबालने या गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि इनके साथ बहुत सारा ग्रीस भी पाया गया है, ऐसा माना जाता है कि इन पिट बॉयलर्स में वसा को बाहर निकालने के लिए हड्डियों को तोड़कर उबाला जाता था। क्या एक ही स्थान पर पाककला का आविष्कार किया गया था और वह अन्य स्थानों पर फैल गया, या कई बार अलग अलग जनजातियों द्वारा अलग अलग समय पर और अलग अलग जगहों पर इसका आविष्कार किया गया था? इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है। वर्तमान धारणा यह है कि खाना पकाने की प्रक्रियाओं का कई स्थानों पर एक साथ आविष्कार हुआ था। तो अगली बार इससे पहले कि आप चूल्हे को जलाएं या माइक्रोवेव पर काम करें, तो बस एक बार यह सोच लें कि यह जादुई पाककला विज्ञान कैसे हमारे घरों में और इस दुनिया में आया।
बाल्यावस्था, वयस्क और वृद्धावस्था में भी स्वस्थ भोजन उचित वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में जहां आधी से अधिक महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं, कुपोषण को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है। इसी संबंध में हमने बात की सीएसआईआर सीएफटीआरआई की वरिष्ठ मुख्य वैज्ञानिक श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह जी से, जो हमें बताती हैं कि महिलाओं को किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता है। क्या वाकई में महिलाओं को विशेष पोषण की आवश्यकता होती है? अगर हाँ तो क्यों?
दरअसल जब आप महिलाओं को किशोरावस्था की आयु में देखेंगे तो ये पाएंगे कि उस समय उनमें कई तरह के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, चाहे वो मासिक धर्म के समय हो या फिर प्रसव के दौरान। तो ऐसे समय में उनको विशेष पोषण की आवश्यकता होती है, जिसमें कैल्शियम, लौह तत्व और फॉलिक एसिड शामिल है। इनमें से भी फॉलिक एसिड खासतौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी कमी के कारण बच्चे में जन्म दोष हो सकते हैं। भारत में अधिकतर महिलाओं का आहार वनस्पति आधारित होता है, जिसका अर्थ यह है कि आयरन उनके लिए एक सीमित सूक्ष्म पोषक बन जाता है तथा उसे पूरक आहार के रूप में देना पड़ता है, क्योंकि ये तो सब जानते ही हैं कि आयरन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक है जो कि हीमोग्लोबिन में मौजूद है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स में मौजूद एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आवागमन में सहायक है। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारे पास आयरन ना हो तो स्वयं ही हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है और हम रक्तहीनता से पीड़ित यानी एनेमिक हो जाते हैं। हम अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर पाते। 51 से 70 साल की आयु की महिलाओं में हॉर्मोन्स की मात्रा कम होती है, जिसके कारण हड्डियों से कैल्शियम की हानि यानी रिसॉर्प्शन हो सकता है, जिसके कारण वे ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती हैं। और यदि कैल्शियम आहार में ना दिया जाए तो रजनोवृत्ति या मेनोपॉज के बाद वाली अवस्था में अस्थि भंग यानी बोन फ्रैक्चर की संभावना भी बढ़ जाती है।
तो भविष्य में इस तरह की परेशानियां ना हो, इसके लिए किशोरावस्था में किस प्रकार का पोषण मिलना चाहिए?
देखिए, हमारे देश की अधिकतर कन्याएं रक्तहीनता का शिकार यानी एनेमिक होती हैं। कारण यह है कि हमारे यहाँ अधिकतर लोगों का आहार शाकाहारी या वनस्पति आधारित होता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि हॉर्मोन्स में परिवर्तन होने के कारण महिलाएं एनेमिक हो जाती हैं और यदि भोजन में आयरन ना हो तो यह गंभीर एनीमिया में भी बदल सकता है। इस वजह से वह काम नहीं कर पाएंगी और आगे चलकर उनको गर्भ धारण करने में भी परेशानी होगी, क्योंकि वह खुद ही भ्रूण को पोषण देने में अक्षम होती है। आयरन भी दो प्रकार के होते हैं, हीम और नॉन हीम। हीम आयरन मीट तथा अन्य पशु उत्पादों में होता है, तो अधिकतर शाकाहारियों को मिलने वाला आयरन दरअसल नॉन हीम होता है, जिसका पाचन और अवशोषण दोनों ही कठिन है और यही कारण है एनीमिया का। हमारे अधिकतर प्रोटीन के स्रोतों में फाइटेट होता है, जो कि आयरन, कैल्शियम और अन्य खनिजों को शरीर को उपलब्ध नहीं होने देता और रिसॉर्प्शन यानी पुनर्वशोषण बिगड़ जाता है। युवा कन्याओं को खासतौर पर अपने आहार का ध्यान रखने की जरूरत की सख्त आवश्यकता है। उनके आहार में उचित आयरन के भंडार होने चाहिए और कैल्शियम की अधिक मात्रा भी देनी चाहिए, ताकि शरीर अस्थि निर्माण में सक्षम हो और इन खनिजों का संग्रहण भी कर सके। इससे यदि बढ़ती उम्र में भोजन में इनकी कमी भी हुई तो शरीर के भंडारों द्वारा इनकी कमी की पूर्ति की जा सकती है। इसके अलावा उनकी उम्र और जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए उन्हें अच्छे प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, जिसमें की जरूरी अमीनो एसिड्स हो।
जैसा कि बताया, भारत में अधिकतर महिलाएं रक्तहीनता का शिकार हैं। इस समस्या का पोषण द्वारा कैसे समाधान किया जा सकता है? क्या कोई सरल तरीका है?
भारत में लगभग 70% महिलाएं प्रसूति की आयु में एनेमिक होती हैं, जिसका कारण है मासिक धर्म और हॉर्मोन्स में परिवर्तन। इसका सामना करने का एक तरीका यह है कि हीम आयरन का अधिक सेवन किया जाए, जो कि अवशोषण में आसान होता है। इसके मुख्य स्रोत पशु उत्पाद है, तो एक तरीका है कि आहार में मांसाहार का शामिल होना। और यदि वनस्पति आधारित भोजन से ही अगर पोषण प्राप्त करने की इच्छा है तो विटामिन्स का अधिक सेवन कर सकते हैं। विटामिन सी और बीटा कैरोटीन को यदि आयरन युक्त आहार के साथ मिला दिया जाए तो आयरन का Fe3+ रूप Fe2+ में परिवर्तित हो जाता है, जिसका बेहतर अवशोषण होता है। बाकी तरीकों में आयरन का अवशोषण सही से नहीं हो पाता। आयरन युक्त भोजन को कैल्शियम युक्त भोजन के साथ मिलाकर खाना भी एक तरीका है। लोहे के बर्तनों में खाना पकाना भी एक अच्छा एवं सरल विकल्प है। इससे लोहा धातु रूप में ही एसिडिक आहार के साथ मिश्रित हो जाता है और मूल आहार के मुकाबले उसमें 200 गुना अधिक आयरन होता है। और स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में लोहे के बर्तन में खाना बेहतर पकता है।
आयरन की गोली को लेकर लोगों में एक डर सा क्यों बैठा है, और क्या हमें पूरक रूप में आयरन की गोली लेनी चाहिए?
हमारे देश में 70% महिलाएं एनेमिक होती ही हैं और यह संख्या बच्चों में भी कम नहीं। भारत में लगभग 45 से 50% बच्चे एनेमिक हैं। इससे लड़ने का एक तरीका है पूरकता। एनीमिया के भी कई प्रकार हैं। पहला, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया। दूसरा, विटामिन B12 के अभाव से हुआ एनीमिया। और तीसरा, जो सबसे प्रचलित और मुख्य कारण है, जो है कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। तो अब बात आती है कि ये आयरन आखिर दिया कैसे जाए, क्योंकि आहार द्वारा मिलने वाला आयरन पर्याप्त नहीं होता, जिस कारण बच्चों में रक्तहीनता हो जाती है। इसका दूसरा तरीका है सप्लीमेंटेशन या पूरकता द्वारा आयरन प्राप्त करना, पर इसके साथ आती है अवशोषण की समस्या। जब आयरन को चिकित्सीय खुराक के रूप में दिया जाता है तो उसका अवशोषण कठिन होता है, जिसके कारण कब्ज की परेशानी हो सकती है। इसके कारण कुछ तरह के विकार और बेचैनी सी होने लगती है, जिस वजह से बच्चे इसका सेवन पसंद नहीं करते।
ये तो हुई बच्चों की बात, बुजुर्ग महिलाओं के लिए किस प्रकार का पोषण होना चाहिए, क्या कोई विशेष आवश्यकताएं हैं?
जी हाँ बिल्कुल, बुजुर्ग महिलाएं किसी न किसी विकार या बीमारी से अवश्य जूझ रही होती हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन इत्यादि। इसके अलावा उनकी मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं होती, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे दवाइयों का दुष्प्रभाव या फिर अकेलापन। यह भी कारण हो सकता है कि अपने पति की मृत्यु के बाद वे मानसिक रूप से दुखी होती हैं तथा अपने लिए खाना बनाना पसंद नहीं करती और उचित तरह से खाना खाती भी नहीं है। दांत न होने और पेट में मौजूद एसिड की कमी के कारण भी भोजन के पाचन में प्रभाव पड़ता है। इनमें से लगभग सभी औरतें रजनोवृत्ति के बाद वाली अवस्था में होती हैं, जिस कारण वे आसानी से अस्थि सुषिरता या ऑस्टियोपोरोसिस की चपेट में आ सकती हैं। उनके शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है, जो कि हड्डियों की सुरक्षा करता है। कई बार ये भी होता है कि उन्हें अपने ऑस्टियोपोरोटिक होने का बोध ही नहीं होता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनके भोजन में प्रोटीन की अधिक मात्रा होनी चाहिए, ताकि उनके शरीर के पोषण की कमी की भरपाई की जा सके। इसके अलावा उनकी गतिहीन जीवन शैली को देखते हुए आसानी से पचने वाला भोजन ही एक उचित विकल्प हो सकता है, और कैल्शियम को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ अन्य विकल्पों के बारे में भी सोचा जा सकता है। आजकल तो बाजार में पाचन योग्य एंजाइम्स भी उपलब्ध हैं, जो कि पेट में एसिड और पेप्सिन की कमी को पूरा करते हैं, और इस कारण वृद्ध महिलाएं बिना किसी शक के प्रोटीन युक्त आहार का सेवन कर सकती हैं। आपको कुछ ऐसे भी उत्पाद मिलेंगे जिनमें एंजाइम हाइड्रोलाइज होता है, जिस कारण प्रोटीन का पहले ही पाचन किया जा चुका होता है। तो इससे जब इस तरह के उत्पादों का सेवन किया जाता है, उनका अवशोषण सरल होता है तथा उन्हें पूरी पाचन क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती।
पोषण के विषय में इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, यह था इस पखवाड़े का थाली टेल्स। आशा है आप सभी को यह पसंद आया होगा। इसकी पटकथा लिखी है श्री कोलेगल शर्मा जी ने। इसका हिंदी अनुवाद कर अपनी आवाज दी है सुरुचि नौटियाल, प्रतिभा सिंह एवं वंदना पद्मनाभन ने। यूट्यूब तथा संगीत के लिए श्री शिव गणेश के प्रति हमारा आभार। थाली टेल्स CSIR CFTRI मैसूरू द्वारा निर्मित और निशुल्क वितरित की जाने वाली पाक्षिक ऑडियो पत्रिका है। आप थाली टेल्स को किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं। श्रोतागण, खाद्य तथा इससे जुड़े मुद्दों पर अपने प्रश्न एवं सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से सीधा 9449120618 पर भेज सकते हैं, या सोमवार से शुक्रवार तक 08212515910 पर कॉल भी कर सकते हैं। थाली टेल्स के आगामी अंकों में आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।